समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह और सुहावनी सुबह के साथ आगाज हो रहा है आकाशवाणी गोल्ड पर आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच वी हैव लाइंड अप।
जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की।
दीपावली का उल्लास, उमंग, ऊर्जा हर ओर है। पूरे वर्ष इस पर्व की प्रतीक्षा होती है। घरों को साफ किया जा रहा है और सजाया जा रहा है और लोग अपने अपने कार्यस्थलों से छुट्टी लेकर अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।
एंड हाउ वंडरफुल इज दैट, दिस इज द लास्ट आई थिंक वर्किंग डे ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक एंड अक्टूबर। वेल, अक्टूबर इज टर्निंग आउट टू बी द मोस्ट फेस्टिव एंड ऑल्सो हॉलीडे पैक्ड मंथ्स ऑफ द ईयर। सो दिवाली, देवेंद्र, एज यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, दिवाली अप्रोचेस अस and beginning tomorrow the 5 days marks the coming 5 days they mark continuous stretch for all the festivities and joy and light everywhere।
जी, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह बड़ी खबरों के साथ।
यस देवेंद्र।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित विकसित भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान के संयोजन में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, केंद्र और राज्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, मास्टर प्रशिक्षक और देश भर से आदि सहयोगी प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये सम्मेलन जनजातीय ग्राम विजन 2020 पर विचार से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना तैयार करना है। सम्मेलन के दौरान 5 विषयगत समूह, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और उद्यमिता, बुनियादी ढांचे और शासन तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे।
The filing of nominations for the first phase of Bihar Assembly elections, it will end today. Out of a total of 243 seats, 121 constituencies will go to polls in this phase on November 6. Districts covered in first phase include Patna, Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj and Bhojpur. The scrutiny of nominations will be held tomorrow and the last date for withdrawal of candidature is October 20. Polling for the second phase is scheduled on November 11 and the counting of votes will be taken up on November 14.
जी, बिहार से चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल आज अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल करेंगे। राज्य में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर पूरे मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपना इस्तीफा सौंप दें ताकि मुख्यमंत्री और राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले रणनीतिक बदलाव किया जा सके। निवर्तमान मंत्रिपरिषद में 8 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं।
External Affairs Ministry has said that India is closely monitoring the situation between Afghanistan and Pakistan. Briefing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "It is clear that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities." He said it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. The spokesperson said, "Pakistan, India fully remains committed to the sovereignty I beg your pardon, that India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. On upgrade of Indian mission in Kabul, Mr. Jaiswal said India's technical mission has been operational in Kabul since June 2022. He informed that its transition to an embassy will happen in the next few days. On whether there was a conversation between US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi on oil imports, the spokesperson said he is not aware of any conversation between the two leaders.
खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 24 नवंबर से राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया का 5वां संस्करण जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित होगा। 12 दिन तक चलने वाले इन खेलों में पूरे देश के 5000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार खेलो इंडिया पहल ने एक मजबूत खेल व्यवस्था का निर्माण किया है। डॉ मांडविया ने कहा कि राजस्थान में विश्वविद्यालय खेल हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये खेल प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे। इस वर्ष इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंब, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायाकिंग शामिल हैं। खो खो को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में इस बार शामिल किया गया है। इन खेलों में पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायाकिंग तथा साइकिलिंग को शामिल किया जा रहा है।
सो देवेंद्र, आफ्टर खेलो इंडिया, लेट्स नाउ फोकस ऑन क्रिकेट। सो ऑस्ट्रेलिया हैव बिकम फर्स्ट टीम टू सिक्योर सेमी फाइनल स्पॉट इन आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया स्टॉर्म्ड इनटू द सेमी फाइनल्स विद अ डोमिनेंट 10 विकेट विन ओवर बांग्लादेश इन विशाखापट्टनम। दिस हैपेंड लास्ट नाइट। द रिजल्ट लिफ्टेड ऑस्ट्रेलिया टू द टॉप ऑफ द टेबल विद 9 पॉइंट्स फ्रॉम 5 मैचेस, व्हाइल बांग्लादेश रिमेन्ड 6th with 2 points, chasing 199 after Bangladesh opted to bat openers Lisa Healy and Phoebe Litchfield. They made light work of the target, sealing victory in under 25 overs. The unbeaten 202-run stand is also the second highest for any wicket against Bangladesh women in ODIs, behind the 243-run partnership between South Africa's Tasmin Brits and Woolworth for the opening wicket at Benoni in 2023. So, leg spinner Alana King was named player of the match. Today, let's tell you about today. South Africa will take on Sri Lanka in Colombo. This will happen at 3 p.m. Moving on to badminton. So, in the Denmark Open badminton tournament, star Indian shuttler Lakshya Sen has secured a spot in the quarterfinals of the men's singles at Denmark Open in Odense. He defeated home favourite Anders Antonsen in the round of 16 yesterday. He will face Alex Lanier of France this afternoon. The match will start at 5:10 p.m. In the men's doubles, 6 seeds Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, they also advanced to the quarterfinals by defeating Yang Pohan and Liu Kuang Heng of Chinese Taipei yesterday. The Indian duo will face Indonesia's Muhammad Rian Ardianto and Rehmat Hidayat this afternoon. The match is scheduled to start at 4:30 p.m.
आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में अब समय है मेट्रो न्यूज का, तो उस क्रम में चलते हैं सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद।
यस देवेंद्र, इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई। एज यू सेड, द तमिलनाडु असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन रिजेक्टिंग द रिमार्क्स एंड पोर्शंस कंटेनिंग वर्ड्स that lower the dignity of the house by state governor R.N. Ravi. The resolution was passed through voice vote. Reading out the resolution, Chief Minister Stalin said that it was a finance bill and required the recommendation of the governor under Article 207(3) of the Constitution for the consideration of the house. The governor had returned the bill with the remarks and asked that his views may be conveyed to the assembly. The chief minister objected to the governor's use of the appropriate consideration. Moving on to Bengaluru, we are now heading to Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has expressed concern over wastage of rice while addressing the audience during the World Food Day in Bengaluru yesterday. He pointed out that Bengaluru alone wastes 943 tons of rice annually, according to a study by Gandhi Krishi Vigyan Kendra. The Chief Minister lamented the hungry alone, they know the value of rice. He added that wasting food is an insult to Annabrahma, the God. Mahatma Gandhi had called food wastage as a sin. He noted that India was once importing rice from America but is now exporting it to other countries. Siddaramaiah said that it is the duty of civil society to remain vigilant about food distribution and the welfare of small farmers. So this is the concern that he expressed. I have another update from Bengaluru. Bangalore South Member of Parliament Tejasvi Surya announced yesterday that a 300 tons per day waste to compressed biogas plant will come up at the KCDC site in HSR layout in Bengaluru. Gail India Limited has come forward to establish this plant as a long-term scientific and sustainable solution to the city's solid waste management challenge. The waste to compressed biogas plant will come up at a cost of 123 crore rupees with a subsidy component of 24 crore rupees and a Swachh Bharat mission. The plant will be operational within 18 to 24 months. Now let's focus on Hyderabad. The Telangana state government has decided to procure the entire paddy produce this year and wait for a report of the legal experts on the reservations issue of backward classes. The cabinet met under the chairmanship of Chief Minister A. Revanth Reddy in Hyderabad last evening. Minister for Information and Public Relations P. Srinivas Reddy and Sports Minister V. Srihari said at a press conference that the state had a record harvest of 1.48 lakh metric tons of paddy, the highest in the country. Of this, around 80 lakh metric tons is expected to reach procurement centres, and the central government has agreed to procure 50 lakh metric tons. The state government has decided to request an additional 15 lakh metric tons from the centre. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Over to you now, Devendra, for Delhi, Mumbai, Kolkata.
Ji. शगुन, जैसा कि टेम्परेचर कम होने लगा है, मौसम सुहाना होने लगा है, ठंडा होने लगा है दिल्ली में भी, लेकिन दिल्ली में साथ में पर्यावरण भी प्रदूषित होने लगा है
जी।
और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना अक्टूबर से फरवरी के बीच होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई है। श्री सिरसा ने बताया कि इस योजना में 7 प्रमुख थीम और 25 एक्शन प्वाइंट शामिल हैं, जिनमें सड़क धूल और निर्माण प्रबंधन के अंतर्गत 86 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी स्मॉग गन पहले से ही तैनात हैं और 70 नए स्वीपर जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन जांच के लिए 578 और खुले में कचरा जलाने पर नजर रखने के लिए 443 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी। श्री सिरसा ने दिल्ली वासियों से आग्रह किया है कि वे ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल करें, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के निर्देशों का पालन करें और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार राजधानी में अगले 80 दिनों तक वैश्विक स्तर के संगीत और सांस्कृतिक समारोह आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल ये जानकारी दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल कालिंदी कुंज में यमुना नदी की स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के भव्य आयोजन के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि नालों को टैप करने, एटीपी एसटीपी लगाने और प्रदूषण नियंत्रित करने जैसे ठोस उपायों से जल की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि छठ पर्व के दौरान यमुना में इस बार झाग नहीं दिखाई देगा और श्रद्धालु यमुना नदी में पूरे मनोयोग से इस पर्व को मना पाएंगे। और चलते हैं मुंबई, जहां महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने निर्देश दिया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए। मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वाघमारे ने चुनाव अधिकारियों, सहायक चुनाव अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग में रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस, गश्ती दल, चौकियों और शिकायत निवारण केंद्रों की तैनाती सहित कानून व्यवस्था के कड़े उपायों का भी आह्वान किया। मुख्य सचिव राजेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे और कानून व्यवस्था के लिए उचित योजना तैयार की जाएगी। बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने गुरुवार को अपने मुख्यालय में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक दिवाली प्रदर्शनी का आयोजन किया। बीएमसी की महिला एवं बाल कल्याण पहल के अंतर्गत आयोजित इस प्रदर्शनी में जूट के बैग, आभूषण, सजावटी दिए, रंगोली, बांस की कलाकृतियां और खाने पीने की लगभग 40 स्टॉल महिलाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई। दिव्यांग छात्रों रुद्र जाधव और दक्षेश पवार को विशेष सम्मान दिया गया, जिनके हाथ से बने दीयों और सजावट के उत्पादों की अधिकारियों ने सराहना की और उन्हें खरीदा, जिससे युवा प्रदर्शकों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कोंकण क्षेत्र के 6 भारत रत्न विजेताओं की मूर्तियों का उद्घाटन किया। ये मूर्तियां रत्नागिरी जिले में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे तारामंडल परिसर में स्थापित की गई। उपयोग से बाहर हो चुके वाहनों के पुर्जों का उपयोग करके जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के छात्रों द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों में महात्मा धोडो केशव कर्वे, महामहोपाध्याय डॉ पीवी काणे, आचार्य विनोबा भावे, डॉ बीआर अंबेडकर, महान गायिका लता मंगेशकर और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को दर्शाया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए संरक्षक मंत्री डॉ उदय सामंत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य इन महान हस्तियों के जीवन और योगदान को प्रदर्शित करते हुए स्थानीय छात्रों को प्रेरित करना है। 15 कला छात्रों ने 9 महीनों के अथक परिश्रम से 25 टन की ये मूर्ति बनाई है, जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस वर्ष जून से सितंबर तक पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से सैकड़ों नाम हटा दिए हैं। माना जा रहा है कि ये नाम बांग्लादेशी नागरिकों के हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने पश्चिम बंगाल के 10 जिलों से 112 बांग्लादेशियों की पहचान की है। 750 लोगों के खिलाफ जांच जारी है। कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली हवाई अड्डों से बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र मिलने की सूचना मिली है। और महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात। यहां आज जैसा कि हमने कहा कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण की शुरुआत हो गई है। आज सुबह थोड़ी बहुत धुंध छाई हुई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जा सकता है, जबकि 18 डिग्री सेल्सियस सुबह तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, अधिकतम 36 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत अधिक संभावना नहीं है। तापमान 32 और 25 डिग्री रहने के आसार हैं। शगुन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
यस देवेंद्र, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन, मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, वेल मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। बेंगलुरु अगेन एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन, मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। हैदराबाद अगेन पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और इवन डस्ट स्टॉर्म, द टेम्परेचर विल हवर बिटवीन मिनिमम ऑफ 22 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस देयर।
मौसम के बाद इतिहास की बात। इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र। आज ही के दिन वर्ष 1870 में तत्कालीन कलकत्ता शहर के बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के अंतर्गत लाया गया। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिशन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए 1888 में आवेदन किया और बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष था 1912।
एंड देवेंद्र, इन 1912 फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ मोंटेनेग्रो, द स्मॉलर एलाई इन द टुमल्टुअस बाल्कन रीजन ऑफ यूरोप, सर्बिया एंड ग्रीस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ऑटोमन एम्पायर, बिगिनिंग द फर्स्ट बाल्कन वॉर इन अर्नेस्ट। In 1989 now, an earthquake rocked the San Francisco Bay Area and on October 17, killing 67 people and causing more than $5 billion in damages, though this was one of the most powerful and destructive earthquakes ever to hit a populated area of the United States. The death toll, it could have been much worse, but thankfully it didn't happen that way.
हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने 2009 में पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर दुनिया के सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने का एक प्रयास किया था।
ऑल्सो देवेंद्र, आई वुड लाइक टू ऐड दैट पॉवर्टी इज नॉट जस्ट इट्स नॉट ओनली अ चैलेंज बट इट इज ऑल्सो अ बैरियर टू अचीविंग सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। सो Today, International Poverty Eradication Day of the World Poverty Eradication Day. It is observed today, every year, global observance and celebrated to raise awareness about the fight against poverty and also, listeners, to address the need for sustainable solutions to uplift vulnerable communities. So today, it's also International Poverty Eradication Day that calls for international cooperation in implementing poverty eradication programs. So everyone, Devendra, everyone can enjoy their basic human rights.
Bilkul. और अब स्मरण उन महान विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है. सबसे पहले नमन काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात स्वामी रामतीर्थ को. उनका मूल नाम तीर्थ राम था. वो मनुष्य के दैवीय स्वरूप के वर्णन के लिए सामान्य अनुभवों का प्रयोग करते थे. स्वामी रामतीर्थ कण कण को ईश्वर का प्रतिबिंब मानने वालों में थे. अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने एक महान समाज सुधारक, एक ओजस्वी वक्ता, एक श्रेष्ठ लेखक, एक तेजोमय सन्यासी और एक उच्च राष्ट्रवादी का दर्जा पाया. स्वामी रामतीर्थ के असाधारण कार्यों के कारण पूरे विश्व में विशेष स्थान उन्हें प्राप्त हुआ. 1902 में उन्होंने 2 साल तक अमेरिकियों को हिंदुत्व के मर्म को समझाया. 1904 में जब भारत वापस लौटे तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका प्रशंसक बन चुका था. हालांकि स्वामी रामतीर्थ सांसारिक जीवन छोड़कर जीवन का दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए वे हिमालय की कंदराओं में पहुंचे जहां उन्होंने व्यवहारिक वेदांत दर्शन पर लिखना आरंभ किया. इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, धर्म और समाज के अनसुलझे रहस्यों को शब्द रूप देने का प्रयास किया. 17 अक्टूबर 1906 को दिवाली के दिन हिमालय के क्षेत्र में गंगा में स्नान करते समय गंगा में डूबने से वो विलीन हो गए, इस धरती से, इस दुनिया से विदा हो गए. प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक अरुण भादुड़ी का भी के भी आज पुण्यतिथि है. उन्हें हम याद कर रहे हैं. उन्होंने शीर्ष रेडियो टेलीविजन कलाकार के रूप में प्रसिद्धि पाई. अरुण भादुड़ी ने संगीत की दुनिया में अपनी प्रभावी कल्पना और सधे हुए प्रदर्शन से अपनी एक विशेष पहचान बनाई. उन्होंने भारत और विदेशों में कई संगीत समारोहों में प्रदर्शन किया. साल 2014 में उन्हें बंग विभूषण सम्मान दिया गया था. 7 अक्टूबर 1943 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे अरुण भादुड़ी का 17 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया था.
नरतन रस लागे मयूर पुंज में उठत बाज मुरलियाज वृंदावन पुंज में उठत बाज.
ब्यूटीफुल. वी वर लिसनिंग टू द ब्रिलियंस ऑफ पंडित अरुण भादुरी, अ ट्रू डेविटी. I would also like to tell our listeners about a musician, well, a Polish composer and virtuoso pianist of the Romantic period, Frédéric François Chopin. Well, he wrote primarily for solo piano. He has maintained worldwide renown as a leading composer of his era, whose poetic genius was based on a professional technique that was without equal in his generation. All of his compositions, they feature the piano. Most are for solo piano, though he also wrote 2 piano concertos before leaving Warsaw, where he was born. Some chamber music and 19 songs also, they set to Polish lyrics. The song which I am playing, this is Spring Waltz. The way these notes, they tune to that beautiful melody that he created. Listeners, let me talk about another musician, Alan Eugene Jackson, country music singer, songwriter. Today it's his birthday and he is known for performing a style which is widely regarded as neo-traditional country, as well as writing many of his own songs. Well, he recorded 21 studio albums, including 2 Christmas albums and also 2 gospel albums, and the song that I am playing, it's very famous, very, very well known amongst his fans and followers alike. Well, let's listen into Small Town Southern Man.
fell in love with a small town woman and they married up and settled down. Natural way of life if you're lucky for a small town southern man. First there came four pretty daughters for this small town southern man.
अपने दौर के एक बेहतरीन गेंदबाज, मृदुभाषी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, साथ ही एक मैच में सभी 10 खिलाड़ियों को आउट करने का करिश्मा करने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले का आज जन्मदिन है। अनिल कुंबले उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने सबसे कम समय में 21 टेस्ट मैच खेले और 100 विकेट लिए। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध दिल्ली में खेलते हुए कुंबले ने 26 ओवर और 3 गेंदों में 74 रन दिए थे और 10 विकेट लेने का करिश्मा कर दिखाया। वो ऐसा करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। कुंबले ने कुल 132 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 619 विकेट लिए हैं। और अब बात 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, मात्र 31 वर्ष की उम्र में अपने प्रशंसकों और प्रियजनों को छोड़ इस दुनिया से अलविदा कहने वाली सशक्त अभिनय का प्रतीक रही स्मिता पाटिल की, जिनकी आज जयंती है। 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की पढ़ाई की। उनके करियर की शुरुआत एक मराठी टेलीविजन में समाचार वाचिका के रूप में हुई, जहां उनकी मुलाकात होती है जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से। उन्होंने स्मिता पाटिल में एक कलाकार को परखा और अपनी फिल्म चरणदास चोर में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका दी। स्मिता पाटिल के सिने करियर में अहम पड़ाव था 1977, जब भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। मंथन फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए दिए थे। शगुन ये कितनी बड़ी बात है, उनको लग रहा था कि कोई ऐसा है जो उनकी आवाज बनकर आ रहा है।
ट्रूली देवेंद्र, यार राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट।
जी, 1985 में आई मिर्च मसाला, जो सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत के संघर्ष की कहानी थी, ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है।
Well, yes, listeners, we are telling you about the timeless icon of Indian cinema. Well, Smita Patil, she became one of the leading actresses of parallel cinema, a new wave movement in Indian cinema, and also she appeared in several mainstream movies throughout her career.
जी. फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और टॉक शो होस्ट सिमी गरेवाल का भी आज जन्मदिन है। 1947 में भारत की स्वाधीनता के 2 माह 2 दिन बाद जन्मी सिमी गरेवाल को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सिमी गरेवाल की 2 बदन साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज प्रमुख फिल्में रहीं।
Also, Devendra, what can we say about the ageless सिमी गरेवाल? Well, an epitome of elegance and grace with timeless charm.
सिमी गरेवाल ने 1983 में दूरदर्शन के लिए इट्स अ वुमन वर्ल्ड नामक एक टीवी श्रृंखला की मेजबानी, निर्माण और निर्देशन किया।
वेल आल्सो देवेंद्र, आई थिंक आवर लिसनर्स मस्ट बी नोइंग दैट शी एंकर्ड द टॉक शो रेंडेवू विद सिमी गरेवाल एंड शी यूजुअली यूज्ड टू वेयर हर सिग्नेचर व्हाइट क्लोथ्स एंड एट द अवार्ड सेरेमनीज एंड टीवी शोज।
जी, और इसी खूबसूरत गीत और सिमी गरेवाल की बातों के साथ अब चाहेंगे आप सभी से अनुमति कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, वी होप यू हैव अ वंडरफुल वीक एंड दिस पर्टिकुलर वीकेंड द दिवाली वीकेंड विद दैट
नमस्कार।